अध्याय 14 दुर्घटना एक्सीडेंट। दुर्घटना व्यवहार एवं सुरक्षा आजकल व्यवहारिक मनोविज्ञान की अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय है। वर्तमान औद्योगिक युग के लिए दुर्घटना एक अभिशाप है। इससे धन एवं जीवन दोनों की अपार क्षति होती है। अब यह बात सामान्य अनुभव एवं शोध के द्वारा स्पष्ट हो चुकी है कि दुर्घटना दैवीय कारण या संयोगवश नहीं घटती, परंतु कुछ निश्चित शारीरिक एवं मानसिक कारक तथा कार्यदशाएं व्यक्ति को दुर्घटना की ओर ले जाती है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से दुर्घटनाओं के कारणों की जानकारी एवं उसके उपचार में आशातीत सफलता मिली है। प्रकृति सामान्य अप्रत्याशित अदूरदर्शी एवं अप्रिय घटनाओं जिनसे धन एवं जन की हानि हो दुर्घटना कही जा सकती है। उद्योगों में दुर्घटना मुख्यतः कार्य परिस्थिति एवं कार्य उत्पादन की प्रणालियों में निहित त्रुटियों एवं कर्मियों के कारण घटती है। औद्योगिक मनोविज्ञान की दृष्टिकोण से औद्योगिक क्षेत्र में कार्य परिस्थिति कर्मचारी या दोनों द्वारा उत्पन्न ऐसी घटनाएं जो आकस्मिक अप्रत्याशित एवं अदूरदर्शी हो तथा जिनसे कर्मचारी उद्योग एवं उद्योगपति को या किसी को हानि पहुंचती हो को दुर्घटना की संज्ञा दी जा सकती है। दुर्घटना शब्द को सीमाबद्ध कर एक क्रम में परिभाषित करना अत्यंत कठिन है। परिस्थिति एवं कारण के आधार पर दुर्घटना को कई तरह से परिभाषित किया गया है। हेलरिच ने दुर्घटना परिभाषित करते हुए लिखा है कि एक अकल्पित एवं अनियंत्रित घटना जिससे वस्तु विषय और व्यक्ति या उससे संबंधित क्रिया या परिणाम व्यक्तिगत क्षति या क्षति की संभावना उत्पन्न करें दुर्घटना कहा जाएगा। हेनरिच के अनुसार दुर्घटना का घटित होना भी गणित के प्रमेय की भांति है, अर्थात पहला दुर्घटना का परिणाम व्यक्तिगत एवं औद्योगिक होता है, दूसरा दुर्घटना केवल व्यक्तिगत या मशीनी संगत से ही घटित होता है, तीसरा व्यक्तिगत या मशीनी संकट का अस्तित्व केवल व्यक्तियों के भूल से है, चौथा भूलों को व्यक्ति वातावरण से ही उपार्जित एवं वंशानुक्रम से ग्रहित करता है। परंतु अनुमान के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ऐसी दुर्घटनाएं भी घटती हैं जिसकी व्याख्या उपरोक्त प्रमेय द्वारा संभव नहीं है। कोई भी क्षति व्यक्ति के लिए असुरक्षित कार्य तथा असुरक्षित मशीन प्रणाली का ही परिणाम होता है। असुरक्षित कार्य एवं असुरक्षित मशीन प्रणाली से संबंधित ज्ञान प्राप्त करके कर्मिक प्रयास के द्वारा दुर्घटनाओं को सीमित किया जा सकता है। दुर्घटना को समझने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार करना आवश्यक है। पहला, अगर एक कर्मचारी मजदूर सीढ़ी से उतरते समय गिर जाता है जिससे उसके शरीर में धूल लग जाती है एवं उसके पैंट का बटन टूट जाता है, लेकिन उसे किसी प्रकार की शारीरिक क्षति नहीं पहुंचती और ना ही कोई उपकरण या सामान क्षतिग्रस्त होता है, तो क्या इस दुर्घटना को दुर्घटना की संज्ञा दी जाएगी? सामान्य रूप से उत्तर होगा नहीं। दूसरा, मान लिया जाए कि मजदूर सीढ़ी से उतरते समय घुटने में मोच आ गया, तब क्या इस दुर्घटना को दुर्घटना माना जाएगा? तीसरा, मान लिया जाए कि मजदूर की कूहनी सीढ़ी से उतरते समय रगड़ खाकर छिल गई, तो क्या इसे दुर्घटना माना जाएगा? यद्यपि कि परिणामों में भिन्नता है, परंतु इन तीनों घटनाओं में वस्तुतः ऐसा व्यवहार घटित हुआ है जिसे निश्चित रूप से दुर्घटना कहा जा सकता है। इस विवरण के आधार पर दुर्घटना को निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है कि ऐसी अप्रत्याशित एवं दोषपूर्ण घटना जो किसी कार्य को पूरा होने में बाधा डाले, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उसका परिणाम क्षतिकारक एवं नुकसानदेह हो को दुर्घटना कहा जा सकता है। दुर्घटना का मानवीय एवं आर्थिक मूल्य। नेल्सन सेफ्टी न्यूज के 1863 के आंकड़ों के अनुसार 1,00,000 व्यक्ति प्रति वर्ष दुर्घटना में मारे जाते हैं। 1970 में यह बढ़कर 1,30,000 हो गया। वर्तमान समय में दुर्घटनाओं के लिए बहुत से सफल वैज्ञानिक उपाय किए गए हैं, लेकिन बढ़ते हुए औद्योगिकरण के कारण आज भी क्षति में कोई अनुपातिक कमी नहीं आती है। निम्न आंकड़े इस बात को स्पष्ट करते हैं। इसके अलावा वर्ष 1970 में 2,200,000 व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होकर घायल हुए, जिसमें से 90,000 व्यक्ति जीवन भर के लिए अयोग अपंग हो गए। इसमें से कार्यदशा से संबंधित क्षति 58,00,000 थी। नेशनल सेफ्टी काउंसिल ने दुर्घटनाओं का मूल्यांकन निम्नलिखित प्रकार से किया है। अप्रत्याशित मजदूरी, नुकसान का या दवा का खर्च, बीमा पर खर्च 4 करोड़। अप्रत्यक्ष क्षति, समय में व्यक्तिक्रम एवं संपत्ति का नुकसान आदि 4 करोड़ = 8 करोड़। इन आंकड़ों के आधार पर उद्योगों में दुर्घटनाओं की विभीषिका को समझा जा सकता है। दुर्घटना द्वारा रही यह क्षति आर्थिक दृष्टिकोण से अपार है, साथ ही साथ जीवन के दृष्टिकोण से अत्यंत दुखी है। इस अतिशय में कमी लाने के लिए कंपनियों उद्योगों में अब सुरक्षा विभाग बनकर सुरक्षा शिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है। दुर्घटना का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट। दुर्घटना का वर्गीकरण कई आधारों पर किया गया है। सामान्य रूप से क्षति के आधार पर दुर्घटना 3 मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, क्षति रहित दुर्घटना, ऐसी घटना जो आकस्मिक, अनियंत्रित तथा दोषपूर्ण हो, लेकिन उसके घटने से किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो तो उसे क्षति रहित दुर्घटना कहते हैं। दूसरा, अप्रत्याशित घटना, ऐसी दुर्घटना जिसमें केवल मामूली क्षति अर्थात खरोंच लग जाना, चमड़ी का छिल जाना अर्थात मोच आ जाना आदि हो, उसे अप्रत्याशित दुर्घटना कहते हैं। तीसरा, गंभीर क्षति दुर्घटना, ऐसी दुर्घटना जिसमें संबंधित व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाए, आग्रहित हो जाए और मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसे गंभीर दुर्घटना कहते हैं। क्षति की तीव्रता के आधार पर दुर्घटना को अन्य प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, सूचना और अयोग्य दुर्घटना। दुर्घटना के कारण अगर कोई मानवीय क्षति नहीं हुई और कार्यदशा में कोई व्यवधान ना आया हो, अर्थात दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति पुनः तुरंत कार्य आरंभ कर दे, तो ऐसी दुर्घटना को सूचना के आधार पर अयोग्य श्रेणी में रखा जाता है। सूचना योग्य दुर्घटना, इस श्रेणी में उन दुर्घटनाओं को रखते हैं जिनसे कार्यदशा में व्यवधान उत्पन्न हुआ हो और दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति घायल होकर तुरंत कार्य करने की स्थिति में ना हो। तीसरा, प्राणांतक दुर्घटना, ऐसी दुर्घटना जिसमें संबंधित व्यक्ति के शरीर का कोई अंग भंग हो जाए या कार्य करने लायक ना रह जाए तो व्यक्ति की जान चली जाए, उन्हें प्राणांतक दुर्घटनाएं कहते हैं। इन वर्गीकरणों के अलावा प्रदत्त चिकित्सा एवं समय क्षति के आधार पर भी दुर्घटनाओं का वर्गीकरण किया जाता है। पहला, प्राथमिक चिकित्सा योग्य दुर्घटना, इस वर्ग में उन दुर्घटनाओं को रखा जाता है जिनमें दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति केवल प्राथमिक चिकित्सा सुविधा के तुरंत बाद पुनः अपना कार्य आरंभ कर दें तथा समय का अधिक नुकसान ना हो। दूसरा, दुर्घटना के बाद उस दिन कार्य योग्य ना होना, जब व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होने के तुरंत बाद कार्य करने की स्थिति में ना रहे तो वह घर चला जाए, लेकिन चिकित्सा सुविधा पाकर दूसरे ही दिन पुनः कार्य आरंभ कर दे, अर्थात इस श्रेणी के दुर्घटना के कारण केवल एक पाली के समय का ही नुकसान होता है। समय की क्षति के आधार पर दुर्घटनाओं का वर्गीकृत किया गया है एवं जिन दुर्घटनाओं में अधिक समय की क्षति होती है उन्हें लास्ट टाइम एक्सीडेंट के नाम से जाना जाता है। दुर्घटनाओं के कारण कॉसेस ऑफ एक्सीडेंट वर्नर फेयर एवं सुल्टर्ज आदि के अध्ययन के आधार पर दुर्घटनाओं को निम्नलिखित कारण है। पहला, कार्य परिस्थिति, इसके अंतर्गत तापमान, प्रकाश व्यवस्था, पारी आदि को रखा जाता है। दूसरा, कार्यविधि, इसके अंतर्गत कार्य अवधि, कार्य की प्रकृति, कार्य की कठोरता, उत्पादन की गति आदि कारकों को रखा गया है। तीसरा, कर्मचारी, व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक क्षमताएं एवं विशेषताएं, आयु, अनुभव, आदतें, सेक्स आदि को रखा गया है। पांच, चौथा, मशीन, इसके अंतर्गत मशीन की बनावट एवं कार्यप्रणाली तथा रखरखाव को रखा गया है। उपयुक्त कारणों के आधार पर दुर्घटनाओं को दो मुख्य श्रेणी में बांटा जा सकता है। पहला, वातावरण से संबंधित कारण, दूसरा, व्यक्ति से संबंधित कारण। यद्यपि कि दुर्घटना का प्रमुख कारण मानव त्रुटि है, तथापि परिस्थितिजन्य या वातावरण संबंधी कारकों का महत्व कम नहीं है। इसे निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, परिस्थिति का सामान्य विशेषताएं। परिस्थिति विशेष में दुर्घटनाकारी साधन की उपस्थिति, जैसे भौतिक साधन एवं उसकी व्यवस्था, वातावरण एवं अस्थिर वस्तुएं आदि। दूसरा, पूर्व परिस्थिति की विशेषताएं, दुर्घटनाकारी परिस्थितियों की शुरुआत, संभावना, जैसे साधनों का बेकार हो जाना, घटना, परिस्थितियों का समयता आदि। तीसरा, दुर्घटना व्यवहार का विस्तार, दुर्घटना व्यवहार के सामान्य दर की संभावना। चौथा, परिस्थिति विशेष में दुर्घटना का उत्तरदायित्व, परिस्थिति अन्य दुर्घटना की संभावना एवं दुर्घटना के सामान्य दर का संयुक्त प्रभाव। आजकल दुर्घटना के कारणों में यांत्रिक एवं वातावरण जन्य कारकों की अपेक्षाकृत व्यक्ति से संबंधित कारकों का अधिक स्पष्ट महत्व हो चुका है। वस्तुतः दुर्घटना की जिम्मेदारी सुरक्षा अधिकारी या सुरक्षा अभियंता के ऊपर सबसे अधिक होती है। इस तथ्य को प्रमाणित करना कठिन नहीं है कि असुरक्षित कार्य दशा असुरक्षित कार्य की ही देन होती है। एक खराब मशीन असुरक्षित परिस्थिति उत्पन्न करती है जिससे दुर्घटना घटित होती है। अगर मशीन का समुचित रखरखाव किया जाए तो इस स्थिति से बचा जा सकता है। यहाँ पर यह तथ्य अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन सा मानवीय कारण जो मशीन के रखरखाव की उपेक्षा उत्पन्न करता है। व्यक्तिगत कारण दुर्घटना को कैसे प्रभावित करते हैं, इसे निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। पहला, व्यक्तिगत विशेषताएं, व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिप्रेरणा, ज्ञानात्मक कौशल, गत्यात्मक कौशल एवं अनुभव इत्यादि। दूसरा, व्यक्ति की पूर्ण व्यवहार प्रवृत्तियाँ, अवांछित आदत, अभिवृत्ति, विशिष्ट योग्यताओं का अभाव, संकट की कल्पना, प्रवृत्ति आदि। तीसरा, विशिष्ट परिस्थितियों में प्रदर्शित व्यवहार, लापरवाही, भूलने की प्रवृत्ति, अशुद्ध प्रत्यक्षीकरण, कार्य प्रक्रिया अपनाने की अक्षमता, दोषपूर्ण कार्य निष्पादन एवं अधिक संकट की कल्पना कर लेना आदि। चौथा, विशिष्ट दुर्घटना की घटना, व्यक्तिगत दुर्घटना दर की संभावना। प्रमुख कारण, तापमान, दुर्घटना के लिए उत्तरदायी वातावरण जन्य कारकों में तापमान महत्वपूर्ण है। सामान्यतः यह देखा गया है कि तापमान के कम होने पर मांसपेशियों का नियंत्रण घटने लगता है और तापमान अधिक होने पर व्यक्ति जल्दी थक जाता है और पसीना आने लगता है जो फिसलन उत्पन्न करता है। ये सब दुर्घटना के कारण बनते हैं। अध्ययनों में पाया गया कि सामान्य से अधिक तापमान पे दुर्घटना होती है। सुल्टन ने 16 डिग्री से 70 डिग्री के तापमान को अलग अलग दशा माना है। इसमें तापमान अधिक या कम होने की दशाओं में दुर्घटना दर प्रभावित होती है। हेम्बली एवं बेडफोर्ड ने जूता के कारखानाओं में दुर्घटनाओं के अध्ययन में पाया कि 55% फारेनहाइट से 59% फारेनहाइट के तापमान के बीच दुर्घटनाएं अत्यधिक कम थी, 59% फारेनहाइट से 69% फारेनहाइट पर कम थी, 69% फारेनहाइट के ऊपर दुर्घटनाएं अधिक थी। सोने के एक खदान में डेविस ने अपने अध्ययन में देखा कि 16 महीने में 20 व्यक्तियों की दुर्घटना में मौत हुई, लेकिन उसी खदान में जब शीतलन सिस्टम लागू कर दिया तो अगले 16 महीने में केवल 6 ही ऐसी दुर्घटना हुई जिसमें कर्मचारी की मृत्यु हुई। कोयला खदान में देखा गया है कि अत्यधिक तापमान उम्र वाले श्रमिकों को अधिक प्रभावित करता है अपेक्षाकृत कम उम्र वाले श्रमिकों के। टॉलमेन और कैंडल ने 80,000 अमेरिकी फैक्ट्रियों में प्राणनाशक दुर्घटनाओं का अध्ययन करके पाया कि जाड़े के मौसम में विशेषकर जनवरी के महीने में अत्यधिक दुर्घटनाएं हुई। 1 जनवरी में अत्यधिक सर्दी पड़ती है, साथ ही साथ प्रकाश की मात्रा भी कम रहती है। इन दोनों मिलकर दुर्घटना दर को बढ़ा देते हैं। तापमान के साथ ही वायु संचालन एवं आर्द्रता भी महत्वपूर्ण ढंग से दुर्घटना को प्रभावित करती है, लेकिन तापमान, आर्द्रता एवं वायु संचालन में किसी भी एक के नियंत्रित से तीनों को नियंत्रित हो सकता है, क्योंकि ये तीनों कारक एक दूसरे से पूर्णतः संबंध है। प्रकाश, प्रकाश की मात्रा कार्य की दिशा को प्रभावित करता है। प्रकाश की समुचित व्यवस्था न रहने के निश्चय ही दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। सुल्टर के अध्ययनों में यह तथ्य निश्चित हो चुका है कि प्रकाश की मात्रा दुर्घटना दर को प्रभावित करती है। कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था का दुर्घटना पर पड़ने वाला प्रभाव भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यदशाओं में भिन्न भिन्न पाया गया है। वर्मन ने बताया है कि प्रकाश की कमी दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार होती है। उन्होंने इसे निम्न प्रकार से स्पष्ट किया है। मशीन के समीप 27% व्यक्ति पर किसी वस्तु का गिरना 15% एवं व्यक्ति का गिर जाना 12% अध्ययनों में पाया गया है कि प्रकाश की कमी के कारण आँख की चोट अपेक्षाकृत अधिक पाई गई। पाली शिफ्ट औद्योगिक संगठनों में पूरे 24 घंटे 3 पालियों को बांट दिया गया है, जिससे अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके एवं थकान के दुष्प्रभावों को कम किया जा सके। लेकिन अध्ययनों में पाया गया कि भिन्न भिन्न पालियों में दुर्घटना दर भिन्न भिन्न होती है। वर्नन ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह बताया कि रात की पाली में दिन की पाली की तुलना में 17% कम दुर्घटनाएं पाई गईं। यद्यपि कि रात्रि की पाली में दुर्घटना कम होने के वैज्ञानिक कारकों को ठीक से नहीं जाना जा सका है, लेकिन यह माना जाता है कि रात का अपेक्षाकृत शांत वातावरण रात में कार्य करने पर जाने हेतु सतर्क मानसिकता एवं कार्य पर जाने के कई घंटे पहले ही तैयार हो जाना आदि इसके कारण हो सकते हैं। इन कारकों के अलावा और अन्य महत्वपूर्ण वातावरण जन्य कारक हैं जो दुर्घटना दर को प्रभावित करते हैं। इनमें कार्य की प्रकृति, कार्य की गति एवं औद्योगिक जलवायु इनमें मुख्य है। कैर ने बताया है कि ऐसे उद्योगों में जहां पदोन्नति की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, स्थानांतरण की संभावना नहीं रहती एवं अत्यधिक शोरगुल होता है, वहां अपेक्षाकृत दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। सोरमेन ने अपने अध्ययनों में पाया कि औद्योगिक इकाई का आकार, उत्पादन की दर, धीमी कार्यगति के लिए आज्ञा सजा दिया जाना, कम मजदूरी, लाभांश में मजदूरों का हिस्सा ना होना, मजदूरों का निम्न जीवन स्तर में दुर्घटना की आवृत्ति से संबंधित पाए गए। बुद्धि, सामान्यतः यह माना जाता है कि एक दुर्घटना मुक्त व्यक्ति के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है, क्योंकि बुद्धिमानपूर्ण निर्णयों के द्वारा दुर्घटनाकारी त्रुटियों पर नियंत्रण संभव है। लेकिन प्रयोगात्मक अध्ययनों के परिणाम से स्पष्ट है कि दुर्घटना एवं मानसिक योग्यता में उच्च सह संबंध नहीं प्राप्त हुए। लेकिन अध्ययनों में यह पाया गया कि कौशलपूर्ण कार्यों के संपादन से ऐसे व्यक्ति जो औसत मानसिक क्षमता से नीचे की योग्यता रखते थे अपेक्षाकृत अधिक दुर्घटनाग्रस्त हुए। विल्स ने पाया कि समान स्तर के कर्मचारियों में बुद्धिमान कर्मचारियों ने बहुत ही अधिक कार्य किया। वेल्ट, लेगार्ड और स्टॉक ने बताया कि औसत बुद्धि वाले कर्मचारी अधिक मानसिक थकान महसूस करते हैं जो दुर्घटना का कारण बनता है। बॉडी एवं फॉर्मेस और चैम्बर्स ने यदि उच्च बुद्धि मुक्त विशेष कौशलपूर्ण कार्यों के लिए अति आवश्यक है, फिर भी दुर्घटना रहित व्यवहार के लिए प्रत्येक व्यक्ति में इसकी एक औसत मात्रा का होना आवश्यक है। व्यक्तित्व औद्योगिक सुरक्षा से संबंधित अनेक विद्वानों ने यह स्वीकार किया है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व एवं प्रकृति दुर्घटना ग्रहणशीलता का निर्धारक है। इस तथ्य के अनेक साक्ष्य भी प्राप्त हो चुके हैं। 1930 में मेट्रोपॉलिटन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने दुर्घटना के घटने के आधार पर दुर्घटना कारणों का निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया था। दुर्घटना के उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि 75% से अधिक दुर्घटनाएं व्यक्ति के व्यक्तित्व गुणों प्रकृति के कारण दुर्घटना व्यवहार के अध्ययन में अंतर्गत परीक्षण एवं कार्य निष्पादन का संबंध में पाया गया। अंतर्मुखी व्यक्तियों का निष्पादन अपेक्षाकृत अच्छा रहा। ऐसे कार्य जिसमें अधिक सतर्कता एवं ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी उसमें बहिर्मुखी व्यक्तियों द्वारा अधिक दुर्घटना हुई। व्यक्तित्व के सांवेगिक पक्ष एवं दुर्घटना व्यवहार के अध्ययन के समय में हर्सी ने शोध महत्वपूर्ण है। हर्सी ने संवेग चक्र एवं दुर्घटना आवृत्ति के संबंध में स्थापित किया और पाया कि ऐसे कर्मचारी जो अपने कार्यकाल में निम्न सांवेगिक अवस्था में रहते हैं अधिक दुर्घटना करते हैं। कुल दुर्घटना की 50% निम्न सांवेगिक अवस्था वाले कर्मचारियों से उसी अवस्था से विशेष घटित हुआ। अपने एक अन्य अध्ययन में हर्सी ने पाया कि जब कर्मचारी लाभान्वित, आश्वासित, गर्वित एवं परिपूर्ण होते हैं उस समय उत्पादन 8% अधिक हुआ अपेक्षाकृत कि जब कर्मचारी क्रोधित, घृणापूर्ण एवं साकित या चिंतित थे। व्यक्ति के अभिवृत्ति एवं दुर्घटना व्यवहार में भी संबंध पाया गया है। इस संदर्भ में गोल्डस्टोन ने अपने तमाम अध्ययनों के आधार पर बताया है कि व्यक्ति के व्यक्तिगत सांवेगिक अभिवृत्तियों का संबंधी कारक यातायात दुर्घटना का घोतक कारक है। रच ने पेपर पेल्थिन टेस्ट के आधार पर इसी प्रकार का परिणाम सामने लाया है।